मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 4 फरवरी 2016 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और साथ ही दोस्तों, इस क्रम में मैं स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अभी सितंबर अक्टूबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दो साथियों के नाम हैं विवेक कुमार जो सासनगढ़ पंजाब से हैं और सौरभ पटेल जो मंडला मध्य प्रदेश से हैं। तो विवेक और सौरभ, आप दोनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि जो अभी फरवरी 28 तारीख से क्लासेस शुरू होने वाली हैं वो बैच कंप्लीट हो चुका है। उसके लिए एडमिशन्स रजिस्ट्रेशन्स काफ़ी पहले बंद हो चुके हैं और अब सितंबर अक्टूबर के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स लगातार उस एडमिशन के बारे में कुछ बातें जानना चाह रहे हैं, तो एक दो बातें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। पहली बात तो यह कि बहुत से स्टूडेंट ने लिखा है कि वो अभी फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं या फाइनल ईयर में हैं, तो क्या उन्हें क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। मित्रों, इसका एक बहुत सिंपल सा उत्तर है। सामान्य तौर पर ये जो 15 दिन की क्लासेस हैं ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट ऑनवर्ड्स के लिए ओपन है। जो भी स्टूडेंट जिन्होंने भी कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर दी है उससे लेकर के फिर आगे वो जिस स्टेज पर भी हैं, क्योंकि ये जो क्लासेस हैं बेसिकली इसको यदि आप कहना चाहें तो आप फाउंडेशन क्लासेस कह सकते हैं। देखिए, जो सिविल सर्विस परीक्षा की जो तैयारी है मित्रों, वो दूसरे परीक्षाओं की तैयारी की तरह नहीं है कि आपके पास सिलेबस है, आपके पास अनसॉल्व पेपर हैं और आप सिलेबस को पढ़ लेंगे, रट लेंगे तो आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके सेलेक्ट हो जाएंगे। नो डाउट कि ये आपको सिविल सर्विस में भी करना है, लेकिन यहां थोड़ा सा फर्क है रटने वाले शब्द को लेकर। यहां जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होते सिलेबस से ही हैं, लेकिन एक बहुत ही व्यापक और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की मांग करते हैं। और ये जो अंडरस्टैंडिंग की जो डिमांड है ये फिर आपसे तीन अलग चीजों की डिमांड करती है। सिविल सर्विस के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि पढ़ना क्या है, खासकर जो जनरल स्टडीज का सिलेबस है, नो डाउट कि प्रस्क्राइब्ड सिलेबस है, लेकिन कितना पढ़ेंगे। इतने सारे अखबार हैं, न्यूज़पेपर, न्यूज़ आ रही हैं, दूसरी खबरें हैं, किसको सेलेक्ट करेंगे आप अपने स्टडी के लिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पढ़ना क्या है। फिर मित्रों, यह भी मालूम होना चाहिए कि पढ़ना कैसे है। ये जो पढ़ना कैसे है इसका मामला दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में उतना नहीं है, ये उतनी बड़ी चुनौती नहीं है। आप दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस पेपर उठा करके देख लीजिए, स्ट्रेट तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सिविल सर्विस के अगर आप उठा करके देखेंगे आईएएस की, तो उसमें क्वेश्चन इक्के दुक्के ही होते हैं जो सीधे तरीके से होते हैं। बाकी जो 85-90% क्वेश्चंस होते हैं वो घुमा फिरा करके होते हैं। तो जब तक हमारे पढ़ने का तरीका नहीं बदलेगा तब तक हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्थिति में सही मायने में नहीं पहुंच पाते जैसे कि सॉल्व किए जाने चाहिए। इसके बाद जो तीसरी चुनौती होती है मित्रों वो होती है लिखें कैसे। क्योंकि देखिए, मैं चाहे जितना भी पढ़ लूं, जितना भी समझ लूं, महाज्ञानी हूं, लेकिन मुझे तो केवल उस पर मार्क्स मिलेंगे। मेरी सफलता तो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगी कि मैं लिखकर क्या आया हूं। अगर मुझे मालूम है और मैं लिख करके नहीं आ पाया तो फिर मालूम हो या ना हो बराबर है। तो लिखा कैसे जाए ये भी एक बड़ा चैलेंज है। तो मित्रों, सिविल सर्विस के लिए तीन इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए और फिर लिखा कैसे जाए। ये जो 15 दिन की क्लासेज हैं ये बेसिकली इन्हीं पर बेस्ड हैं, जो 15 दिनों में आपको परफेक्ट बता देती हैं, आपके अंदर वो विजन पैदा कर देती हैं कि आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, क्या पढ़ेंगे, फिर कैसे पढ़ेंगे और फिर कैसे लिखेंगे, और साथ ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर के आपकी एनालिटिकल पावर डेवलप करने की कोशिश की जाती है। मेरा यह मानना है कि जो स्टूडेंट जितने बिगिनिंग में इन बातों को जान लेगा स्वाभाविक रूप से वो उस तरीके से अपनी तैयारी को अभी से ढाल लेगा। तो इसका फायदा डेफिनेटली उनको आगे चलकर बहुत ज्यादा मिलना ही है। बल्कि जो अगर वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या दूसरा कोई भी कोर्स कर रहे हैं उसमें भी इनका फायदा मिलता है, ये मैंने बहुत प्रामाणिक तौर पर देखा है, महसूस किया। आज भी मेरे पास ढेर सारे इस तरह के मेल आते हैं जिन्हें दोस्तों मैं जानबूझ करके उनके मेल को पढ़ता नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि उसका कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं है कि वो बातें आप लोगों को बताई जाए, शेयर की जाए। इसलिए दोस्तों, जो भी स्टूडेंट कॉलेज गोइंग है और अगर उसे लगता है कि उसे गाइडेंस की जरूरत है तो ये 15 दिन की क्लासेस वो ज्वाइन कर सकता है, अगर ये क्लासेस उसके चॉइस में है तो। दूसरे दोस्तों, कई मेल्स मुझे आए हैं, क्वेश्चंस पूछा जाता है कि क्या मेंस में ये हमारी मदद करेंगे, मेंस की तैयारी में। मित्रों, बट नेचुरल है कि अगर आपको ये तीन चीजें पता लग गई तो आपको इंटरव्यू तक में आपकी मदद होगी, और इंटरव्यू के लिए भी यहां अलग से लेक्चर्स दिए जाते हैं और 15 दिन में इस तरह का माहौल आपको प्रोवाइड किया जाता है कि आपकी पर्सनालिटी, आपके सोचने का तौर तरीका, हर कुछ एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हो जाए। ये जो प्रिपरेशन है ये कंप्लीट प्रिपरेशन है, प्री मेंस से लेकर के इंटरव्यू तक की प्रिपरेशंस को ध्यान में रख करके 15 दिन के 90 घंटे आप सोच करके देखिए, केवल 15 दिन की बात नहीं है, ये 90 आवर्स की बात है। सामान्यतया अगर आप कहीं जाएंगे तो आप देखेंगे कि 1.5 घंटे की एक क्लास होती है और सप्ताह में 3 दिन की क्लासेस होती हैं, तो आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाएंगे तब आपको पता लगेगा कि ये 15 दिन तो कहीं ना कहीं जाकर के 4 से 6 महीने तक की रेंज को कवर कर रहा है। और केवल 15 दिन के 90 घंटे ही नहीं है मित्रों, बल्कि इसके बाद आपको 50 ऑडियो गाइडेंस, स्पेशल ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड किए जाते हैं, 50 लेक्चर्स एक साल तक आपको दिया जाता है। और उसका मकसद यह है कि आपको उस वातावरण में, उस मानसिक वातावरण में रखा जाए जैसे कि अगर आप कोई पौधा जमीन में लगा दें तो कुछ दिनों तक विशेष ध्यान रखना पड़ता है ताकि जड़ें जमीन को पकड़ लें, और एक बार अगर जड़ें जमीन को पकड़ लेंगी तो फिर वो खुद अपने आप में पौधा बड़ा होने लगेगा। इसी को ध्यान में रख करके फिर साल भर तक हर वीक आपको एक स्पेशल ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, वो एक तरीके से गमले में पानी देने का काम करता है। और इसके बाद आप देखेंगे कि साल भर के अंदर आपकी चीजें कितनी पॉजिटिव तरीके से बदल गई हैं। तो मित्रों, ये दो सूचनाएं मुझे आप लोगों को देनी थी, और इसके बारे में अगर आप लोगों को और कभी कोई जिज्ञासा हो तो आप लोगों का स्वागत है, आप मेल भेज सकते हैं। और जब कोई एक सूचना धीरे धीरे काफी लोगों के द्वारा पूछे जाने लगती है तो फिर मैं उसे अपने इस ऑडियो में शामिल भी कर लेता हूं। मित्रों, अब मैं आता हूं लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से में। दोस्तों, अभी खासकर मैडम के पास जो स्टूडेंट्स के फोन आ रहे हैं खास काउंसलिंग के लिए, तो मुझे उन्होंने बताया, मैडम प्रीति अग्रवाल ने, कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इस बात को लेकर परेशान हैं कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, उनका कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, और फिर उनको लगता है कि वो क्या करें, कैसे करें, करें कि नहीं करें, बहुत निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, झुंझलाहट बढ़ती है, चिड़चिड़ाने लगते हैं। डेफिनेटली ऐसा होगा ही। मैं तो थोड़ी सी बात मैं इस बारे में स्पष्ट करना चाहूंगा, इसको हालांकि थोड़ा सा ही वक्त बचा है, लेकिन मैं आप लोगों से जो बात करने जा रहा हूं बहुत ही कॉन्क्रीट है, थोड़ा सा ध्यान से सुने। पहली बात, ये जो कंसंट्रेशन है, इस कंसंट्रेशन को आप कोई बहुत बड़ी चीज मत मान करके चलिए। ऐसा मत समझिए कि यह कोई इतनी समाधि की स्थिति है, मेडिटेशन की स्थिति है कि जब आप पढ़ेंगे तो इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपके दिमाग में कोई भी दूसरा विचार नहीं आएगा। आप कमरे में बैठ करके पढ़ रहे हैं तो आपको किताबों के अक्षर के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। मुझे मालूम है कि जब कंसंट्रेशन की बात स्टूडेंट अपने संदर्भ में करता है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वो अर्जुन और द्रोणाचार्य वाली कहानी बैठी रहती है। जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा था कि तुमको क्या दिखाई दे रहा है, तो उसने कहा था कि मुझे तो पेड़ में जो चिड़िया बैठी उसकी पुतली दिखाई दे रही है, उसके सिवाय कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको भी लगता है कि मुझे किताब के अक्षर के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए, पत्ते भी नहीं दिखाई देना चाहिए, डालियों की तो बात ही अलग है। मित्रों, जब भी साहित्य के फार्म में कोई भी घटना आती है तो वो बदल कर आती है, बहुत ही सुपर फाइन रूप में आती है, अपने आदर्शतम रूप में आती है, बिल्कुल वो आइडियलिज्म के तौर पर आती है। हम नहीं जानते कि ये कथा कितनी सच है कितनी गलत है, लेकिन ये जो है ये कंसंट्रेशन का बिल्कुल सुपर फाइन लेवल है। सामान्य जीवन में हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ती, हमें समाधि में नहीं पहुंचना है। हम केवल जो पाना चाहते हैं वो ये कि जो काम हम कर रहे हैं उस काम को अच्छे तरीके से करें, या बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप कह लीजिए कि उसमें हमारा मन लगे, बस खत्म हो गई बात। आप में से बहुत से मेरे प्रिय श्रोता हैं जो गांव में रह रहे होंगे, कभी गांव की बातचीत का को ध्यान से सुनिए, अपने माता पिता के दिए गए, दादा दादी नाना नानी के दिए गए आदेशों को सुनिए। जब आप घर से निकल करके कहीं जाते हैं तो दादा दादी या माता पिता क्या कहते हैं, देखो जरा ध्यान से जाना। अगर आप वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें कह रहे होंगे तो क्या कहते हैं वो, जरा ध्यान से सुनो। आप जब हॉस्टल में जा रहे होंगे पढ़ने के लिए तो मां बाप क्या कहते हैं कि बेटा मन लगाकर पढ़ना, ये आम बात कहते हैं। ये तो हमारी जिंदगी का, व्यावहारिक जीवन का, लोक जीवन का हिस्सा है मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, ध्यान लगा करके सुनो, ध्यान लगा करके पढ़ो, मन लगाकर काम करो, रोज हम सुनते हैं। तो मित्रों, इसको लेकर के बहुत ज्यादा परेशान मत होइए कि आपको योगा करना है, मेडिटेशन करना है, फलाना करना है, वो करना है। आप कर सकते हैं तो उसका एक अलग फायदा है जो पूरे हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, लेकिन जहां तक पढ़ाई के संदर्भ में कंसंट्रेशन का सवाल है या जीवन में दूसरे काम करने के संदर्भ में कंसंट्रेशन का सवाल है, उसका अर्थ केवल इतना है कि उसमें आपका मन लगना चाहिए। राइट? अब आप कहेंगे सर हमारा मन ही नहीं लगता है। अब देखिए, इसमें दो चीजें हैं, सिंपल सी बात है मित्रों। या तो आपके अंदर इतनी आत्मशक्ति है कि जो चीज भी आपको मिलती है उसे आप अपना लेते हैं और उसमें मन लगाते हैं। दूसरा यह है कि आप अपने मन की चीज खोज लीजिए, उसमें मन लगेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने ऐसे बहुत से उदाहरण देखे हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि जब हमें अपने मन की चीज मिल गई तो कुछ दिनों तक तो मन लगा और इसके बाद ऐसा मन उचटता है कि उसके साथ जिंदगी बितानी मुश्किल हो जाती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप समझ रहे होंगे, मन का खेल ही ऐसा है। इसलिए आप मत सोचिए कि आपके मन की अगर कोई चीज मिल गई तो फिर मन लगा ही रहेगा, या बिना मन की चीज मिली तो अब इसके साथ जिंदगी कैसे कटेगी। ये आपकी आत्मशक्ति है जिसे मैं मेंटल स्ट्रेंथ कहता हूं, जिसे मैं कहीं ना कहीं इमोशनल स्ट्रेंथ भी कहता हूं, कि आप कैसे किसी भी दी हुई चीजों को स्वीकार कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये ताकत आप में और हम में होनी ही चाहिए क्योंकि हम मनुष्य हैं और विवेकशील प्राणी हैं। इस विवेक का इस्तेमाल अगर हम इस बेसिक चीज के लिए नहीं कर सके तो फिर किस चीज के लिए कर सकेंगे। हां, जहां तक पढ़ाई का सवाल है, वहां जो मन नहीं लगता है उसका एक बहुत बड़ा कारण जो है दोस्तों वो ये होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। आप देखिए गणित, क्यों गणित में ज्यादातर लोगों का मन नहीं लगता, साइंस के सब्जेक्ट में बहुत लोगों का मन नहीं लगता, लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो गणित को ही सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं, बाकी सब्जेक्ट उनकी समझ में नहीं आते। रामानुजम हमारे सामने उदाहरण है, वो हिस्ट्री विस्ट्री में फेल हो जाते थे और गणित में तो कमाल के ही थे। तो विषय कठिन नहीं होता है, जो चीज हमें समझ में आने लगती है वो हमारे लिए सरल हो जाती है, जो समझ में नहीं आती वो हमारे लिए कठिन है। जैसे ज्योग्राफी हिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात में पढ़ो सुबह सफा, और जबकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी मेरे सबसे ज्यादा प्रिय विषय है। तो ये व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। कोशिश कीजिए कि सब्जेक्ट को रटने की बजाय समझने की कोशिश कीजिए, और यही पढ़ने का आपका सही तरीका होना भी चाहिए। और मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि यहां जो 15 डेज की क्लासेस होती हैं उसमें विषय को समझने के तरीके पर ही काम किया जाता है, सब्जेक्ट को समझने के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स ही बताए जाते हैं। फिर आप देखिए कि कैसे आपको उस विषय में मजा नहीं आ रहा है, और जैसे ही आपको मजा आने लगेगा वैसे ही मन लगने लगेगा, और जैसे ही मन लगने लगेगा हो गया कंसंट्रेशन का काम, यही कंसंट्रेशन है। तो इसलिए मित्रों, इसे कोई बहुत बड़ा इश्यू न बनाए, इसे बहुत व्यावहारिक तौर पर देखें, व्यावहारिक तौर पर लें, व्यावहारिक तौर पर ही इसका इस्तेमाल करें। तो मित्रों, और ये जो मैं पढ़ने के लिए बात कर रहा हूं ये सभी क्षेत्रों में है। अगर मैं व्यापार कर रहा हूं, व्यापार में फायदा होने लगेगा तो मेरा मन लगने लगेगा। अगर मैं खेती कर रहा हूं, खेती में फसल अच्छी होने लगेगी तो मेरा मन लगने लगेगा। ये सभी जगह होता है। ये जो सिद्धांत है, मैंने चूंकि पढ़ने के ही संदर्भ में बात की है क्योंकि स्टूडेंट्स हैं आप सब, लेकिन ये कहीं भी उसी तरीके से हर जगह बराबर तौर पर लागू होता है। दोस्तों अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। कल के AIR न्यूज में कुछ छोटी छोटी ही बातें हैं, पहले मैं उन्हें दोहरा दूं जो छोटी छोटी बातें हैं। पहला तो वन रैंक वन पेंशन को लेकर के खबर थी। आपको मालूम है कि काफी समय से इसकी मांग हो रही थी और जो हमारे सैनिक हैं लगभग 40-42 सालों से इसकी डिमांड कर रहे थे और सरकार ने एक्सेप्ट भी कर लिया था, लेकिन फार्मूले पर बात नहीं बन पा रही थी। तो अभी सरकार ने घोषणा कर दी है उसकी, तो वन रैंक वन पेंशन की खबर थी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि परीक्षा की दृष्टि से कोई प्रश्न इससे बनता है, लेकिन खबर थी तो मैंने उसे रख लिया है। एक जो खबर थी दोस्तों वो कैबिनेट के डिसीजंस पर थी, इस पर मैं थोड़ी सी डिटेल में आपसे बात करूंगा। मैं जरा कैबिनेट को लेकर के आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, तो इसको हम बाद के लिए रखते हैं। एक जो इंपॉर्टेंट खबर थी फ्रेंड्स वो थी थाईलैंड को लेकर। आपको मालूम है कि हमारे उपराष्ट्रपति जी अभी विदेश यात्रा पर हैं और अब वो थाईलैंड पहुंच चुके हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में उनका स्वागत हुआ है। तो आपको एक न्यूज पता लग गई, एक नॉलेज पता लग गई कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। अब आप देखें कि जो पूरी आपने न्यूज सुनी है उसमें कौन सी चीज आपके काम की है। मैं केवल वही हिस्से आपको बताना चाहूंगा जिस पर आपको फोकस होना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में ही आज कहा कि सिविल सर्विस का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो पहला चैलेंज है, सबसे बड़ा तो नहीं कहूंगा लेकिन शुरुआत यहीं से होती है, आपको मालूम होना चाहिए कि पढ़ा क्या जाना चाहिए, क्या आप पढ़ेंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो अगर हम थाईलैंड की न्यूज को लेकर के चलें तो अब हमें मालूम होना चाहिए कि इसमें कौन सी न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए का मतलब देश के लिए नहीं, एक सिटीजन के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है। एक खबर बैंकॉक इसकी राजधानी है। दूसरी जो खबर है वो यह है कि थाईलैंड भी एशियान का देश है, जो एशियान संगठन है उसका सदस्य है और भारत इसका बहुत ही प्रमुख राष्ट्र है, आपको मालूम होगा। इसके बाद आप देखिए कि जो थाईलैंड के साथ भारत के बहुत ही अधिक सांस्कृतिक संबंध रहे और प्राचीन काल से रहे, अभी की बात नहीं है। मैं थाईलैंड गया हुआ हूं, बैंकॉक हम लोग रुके हुए हैं, मैं और मेरी पत्नी दोनों ही गए थे, कई दिन वहां रहे थे। वहां से आप लगभग लगभग मैं समझता हूं शायद अब एग्जैक्ट तो मुझे नहीं मालूम 150-200 किलोमीटर की दूरी पर आप जाएंगे तो वहां आपको एक जगह मिलेगी जिसका नाम ही है अयोध्या। वहां के लोग थोड़ा सा उच्चारण में करते, वो बेसिकली अयोध्या का रूप है अयोध्या। वहां गौतम बुद्ध की बहुत विशाल लेटी हुई मूर्ति है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म वहां है और हिंदू धर्म तो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंटली है। जब आप थाईलैंड के जो किंग हैं उनके महल को देखेंगे तो देखकर दंग रह जाएंगे कि वहां की दीवारों पर जो रामचरित मानस की कथाएं हैं उनके चित्र उकेरे हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि थाईलैंड के साथ भारत के कितने प्राचीन सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। और जब हम किसी से अपने विदेश संबंधों की बात करते हैं तो याद रखिए कि उसमें ये जो प्राचीन हमारे जो टाइज हैं, जो प्राचीन संबंध है, बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। इस लिहाज से थाईलैंड के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। फिर जो एक इंपॉर्टेंट खबर थी वो ये थी कि कई सेक्टर्स बताए कि थाईलैंड के साथ हमारे किन क्षेत्रों में हमारा सहयोग है। जो सबसे इंपॉर्टेंट थाईलैंड का रोल वो है समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से। और आपको ध्यान होगा कि पिछले साल के सिविल सर्विस के मेंस में समुद्री सुरक्षा पर प्रश्न भी पूछा गया था। कभी वो हिंद महासागर को लेकर के पूछा जाता है, 2013 में हिंद महासागर को लेकर के पूछा गया, 2014 में फिर से दूसरे समुद्री सुरक्षा की बात आई और इसके बाद 2015 में आते आते वो एक समुद्रीय पार आंतरिक सुरक्षा का एक कंबाइंड क्वेश्चन बन गया। तो इस तरह से समुद्री सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा लगातार रहा है। तो थाईलैंड उसमें भारत की बहुत बड़ी मदद मतलब बहुत बड़ा सहयोगी हो सकता है। और वैसे भी मैं आपको बताना चाहूंगा मित्रों कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है और एक्सटर्नल सिक्योरिटी है ये आपके सिविल सर्विस के सिलेबस में है और इससे हर साल एक या दो प्रश्न पूछे ही, एक तो पूछा ही जाता है और अधिकतम दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इस बार जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो लग रहा है खासकर भारत की आंतरिक सुरक्षा को जो IS से चुनौती मिल रही है। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे भारत में जगह जगह पर IS से जुड़े हुए लोग पकड़े जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ करने के बाद बड़ी चौंकाने वाली खबरें मिल रही हैं। आज भी इसको लेकर के थोड़ी सी खबर थी, वो सीधे सीधे आईएसआईएस से भले ही न जुड़े, वो दूसरे आतंकवादी संगठनों से थी, जो पठानकोट में हमला हुआ था, फिर वहां किन किन लोगों को पकड़ा जा रहा है और पूछताछ की जा रही है। तो खासकर ये जो आतंकवादी संगठन है और जो आईएसआईएस है, इसके जरिए जो भारत के आंतरिक सुरक्षा को जो एक थ्रेट मिल रही है, उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। और इससे रिलेटेड जब भी आपको कोई आर्टिकल या एडिटोरियल कमेंट पढ़ने को मिले, कोई कंटेंट मिले, तो वो आपको नोट कर लेना चाहिए। मित्रों, इसके बाद एक लास्ट छोटी सी खबर थी। कुछ ऐसे आंकड़े होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं ये नहीं कहता, बिल्कुल मैं कभी भी इस बात के पक्ष में नहीं रहता कि हमारे दिमाग में आंकड़ों का खूब सारा जमघट हो, और जितना ज्यादा आंकड़े हम जानेंगे उतनी ही अच्छी हमारी तैयारी होगी, वो भी एक खतरनाक स्थिति होती है। लेकिन कल की न्यूज में आखिरी में जो एक बात थी, वो कि एक खबर थी जो हमारे एक मंत्री ने कही, और वो ये कि जो सौर ऊर्जा का भारत में अगर इस्तेमाल होता है, खासकर मध्यम और लघु और सूक्ष्म उद्योगों के क्षेत्र में अगर सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, तो इससे 5 करोड़ ग्रामीणों को रोजगार मिल सकता है। ये एक तथ्य का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। इंपॉर्टेंट तथ्य इस मामले में दोस्तों कि ये जो आंकड़ा है, इसका इस्तेमाल कई तरीके से किया जा सकता है। पहला तो ये है कि हमारे जो लघु मध्यम सूक्ष्म उद्योग हैं, ये बिजली संकट से बहुत ज्यादा जूझते रहते हैं, क्योंकि ऐसे उद्योग ज्यादातर गांव में या कस्बों में ऐसे क्षेत्रों में लगे हुए हैं, तो वहां बिजली की सप्लाई नहीं होती। तो सौर ऊर्जा अगर उनको मिलने लगे, तो बिजली की सप्लाई की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आपको मालूम है कि जो भारत में आज भी जो सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला सेक्टर है, वो ये लघु मध्यम उद्योग ही है। और मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं मित्रों कि अमेरिका में भी जो सबसे ज्यादा रोजगार प्रोवाइड करने वाला क्षेत्र है, वो बड़े बड़े उद्योग नहीं है, वृहद उद्योग नहीं है, ये मध्यम दर्जे के और छोटे उद्योग ही हैं जो सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराते हैं। और भारत जैसे देश में जहां पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो, वहां तो बट नेचुरल है कि हम मध्यम लघु और सूक्ष्म उद्योगों की उपेक्षा नहीं कर सकते। तो एक तो सौर ऊर्जा से रिलेटेड यह फैक्ट हो गया। दूसरे, आपको मालूम है कि लगातार अब, जबकि मोदी जी की सरकार को काफी समय होने जा रहा है, लगातार एक बात हो रही है कि रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। लोग व्यंग से भी कहने लगे कि वो अच्छे दिन कब आएंगे। उस दृष्टि से आप देखेंगे कि सौर ऊर्जा के अपनाए जाने पर 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। कल्पना करके देखिए, 5 करोड़ कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, और 5 करोड़ लोगों को भी जो मिलेगा, वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। क्योंकि सौर ऊर्जा के जब वहां पैनल्स स्टैब्लिश किए जाएंगे, तो बट नेचुरल है कि पहले तो पैनल्स स्टैब्लिश करने के लिए लोग चाहिए, इसके बाद फिर उनके रख रखाव के लिए लोग चाहिए। सामान्य सी टेक्नोलॉजी होती है, जो हमारे यहां स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ है कौशल भारत, उसके आधार पर उनको थोड़ा सा ट्रेंड करके और उनके रख रखाव के लायक बनाया जा सकता है। तो गांव के ही लोग होंगे, क्योंकि गांव के लोग होंगे तो गांव छोड़ करके भी नहीं जाएंगे, उनको वहां रोजगार मिल जाएगा और वो काम भी होता रहेगा। तो इस दृष्टि से ये जो आंकड़े हैं, इसका इस्तेमाल आप कई तरीके से कर सकते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। दोस्तों, मैंने एक छोटा सा एक लाइन का एक वाक्य था कि सौर ऊर्जा के उपयोग से 5 करोड़ ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा, बस यही एक वाक्य था। मैंने इसको जानबूझ करके आपके सामने इतने विस्तार के साथ रखा है, जानबूझ करके इसलिए रखा है कि आप अपनी तैयारी को उसी रूप में ढाल सकें, अगर आपको मेरी बात ठीक लगती है तो। जो छोटा सा फैक्ट होता है और जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आपको चाहिए कि आप उसे सुनकर और यूं ही न छोड़ दें, या रट कर न छोड़ दें, या लिख कर न छोड़ दें। आपको अपने लेवल पर कोशिश करनी चाहिए कि मैं अब इस फैक्ट को, इस तथ्य को कितने अलग अलग तरीके से व्याख्यायित कर सकता हूं, कितने अलग अलग विषयों से जोड़कर इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। यही रियल में कैपेसिटी है, और मुझे लगता है कि सिविल सर्विस में सफलता के लिए इस कैपेसिटी का होना जरूरी है। अनिवार्य मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि यदि ये कैपेसिटी नहीं होगी, तो जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके अच्छे उत्तर कैसे दिए जा सकते हैं, मेरी समझ में फिर ये बात नहीं आती। तो इसलिए मित्रों, जो सिविल सर्विस की तैयारी का जो चैलेंज है, वो घंटों का चैलेंज नहीं है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने और ज्यादा से ज्यादा किताबों को रटने का चैलेंज नहीं है। वो चैलेंज केवल इस बात का है कि आपको जो चीजें जाननी चाहिए वो मालूम हो, अच्छे से उनको जाने और फिर उनको कैसे लिख के आना चाहिए, ये कला आपके पास होनी चाहिए। और केवल उसी के एक नमूने के तौर पर मैंने ये सौर ऊर्जा की बात आपके सामने रखी है। दोस्तों अब मैं आता हूं कैबिनेट के ऊपर। आपने न्यूज में सुना कि कैबिनेट ने कुछ डिसीजंस लिए हैं। उसी न्यूज में आपने यह भी सुना कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। आपको मालूम होना चाहिए कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति क्या होती है। क्या कैबिनेट में भी कोई इस तरह की फिर समितियां होती हैं? अगर समितियां होती हैं तो कौन कौन सी समितियां होती हैं? फिर वो जो समितियां होती हैं उनके क्या अधिकार होते हैं, किस तरीके से उनका गठन होता है, ये इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्री में भी पूछ लिए जाते हैं और मेंस में इस तरह से सीधे सीधे तो नहीं पूछे जाते क्योंकि ये स्ट्रेट क्वेश्चन है और सिविल सर्विस में स्ट्रेट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन से तो नहीं ही आते हैं। फिर भी आपको मालूम इसलिए होना चाहिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, तभी आप जो न्यूज सुनते हैं या जो न्यूज पढ़ते हैं या आर्टिकल्स पढ़ते हैं उनके साथ सही न्याय कर सकेंगे, नहीं तो दिमाग में क्लैरिटी नहीं आएगी, राइट? तो पहला मेरा सुझाव है कि जो संसदीय जो मंत्रिमंडलीय समिति होती है, संसदीय समिति यानी मंत्रिमंडलीय समिति के मैं बात कर रहा हूं, पार्लियामेंट्री कमेटी की बात नहीं कर रहा हूं। देयर इज अ डिफरेंट बिटवीन द कैबिनेट कमेटीज एंड पार्लियामेंट्री कमेटी, और वो भी आप अभी ही अपने दिमाग में क्लियर कर लें कि इन दोनों में क्या फर्क है, राइट? फिर आपने न्यूज में सुना कि इस कैबिनेट ने कई डिसीजंस लिए हैं, जैसे नाम लिया आपने, सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी, फिर जो सूखे नारियल थे उनके न्यूनतम मूल्य बढ़ाए, इस तरह के सुना। ये भी सुना कि आपने कोयले खानों का आवंटन किस तरह से पारदर्शी तरीके से किया जाएगा और ऑनलाइन किया जाएगा, ये सारी खबरें आपने सुनी। एक बात आपने देखी होगी कि ये जितने भी डिसीजंस लिए गए इन सब का रिलेशन कहीं ना कहीं इकोनॉमिक से था, सबका रिलेशन इकोनॉमिक से था, यानी कि स्वाभाविक है कि जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति होगी, नाम से ही स्पष्ट है, वो आर्थिक मामलों पर ही रिकमेंड करेगी, बातचीत करेगी, बताएगी, सरकार से बात कहेगी। तो एक चीज आपके दिमाग में देखिए, ध्यान से सुनने पर, पढ़ने पर, समझने पर स्पष्ट हो गई। अब मित्रों जो कैबिनेट है, एक कैबिनेट क्या है? कभी कभी आपको लगता है कि साहब जीएसटी पारित नहीं हो रहा है, जीएसटी जब तक अगर जीएसटी लागू करना है तो उसे पार्लियामेंट से पारित कराना है। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि उसको पार्लियामेंट से पारित कराने का क्या जरूरत है? कैबिनेट क्यों नहीं डिसीजन ले लेती? कैबिनेट डिसीजन ले ले कि जीएसटी लागू होगा, जीएसटी लागू हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए? बहुत से मामलों में कैबिनेट डिसीजन लेती भी है, जैसे आप देखिए योजना आयोग को भंग कर दिया गया, सोचिए प्लानिंग कमीशन को भंग कर दिया गया और उसकी जगह पर नीति आयोग बना दिया गया। इसके लिए तो विधेयक नहीं पेश किया गया संसद में, कोई जरूरत नहीं पड़ी कि साहब इस पर मतदान हो, लोकसभा से पारित कराया जाए, फिर राज्यसभा उसको पारित करे, फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करे। तो ऐसा क्यों हुआ? जीएसटी क्यों नहीं लागू कर सकती कैबिनेट? तो मित्रों मैं इसका उत्तर देने नहीं जा रहा हूं, मैंने केवल फूड फॉर थॉट दिया है। और खासकर ये जो बात मैंने आपके सामने रखी है वो इस लिहाज से रखी है कि आपके दिमाग में एक मंथन चलना चाहिए। पता नहीं आज की पीढ़ी में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने दूध को मथते हुए देखा हो, जब दूध को मथ करके मक्खन निकाला जाता है, वो प्रोसेस शायद ही, मतलब बहुत कम लोगों ने देखा होगा, शहरी स्टूडेंट्स को तो मौका ही नहीं मिलता। हम लोगों ने देखा है, देखा क्या है, हम लोगों ने मथा भी है, किस तरह से दूध को बिलोया जाता है, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, और तब जाकर के उस दूध से मक्खन निकल करके ऊपर आता है, तैरने लगता है, सारा का सारा सार ऊपर आ जाता है। मित्रों यही है जो सिविल सर्विस की पढ़ाई के लिए यही जरूरी होता है कि आप अपने दिमाग में एक क्वेश्चन क्रिएट करें, जैसे कि कैबिनेट को लेकर के मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया। अब आप इस पर सोचें, सोचेंगे हो सकता है ना सोच पाए, कोई बात नहीं, आपके मदद के लिए किताब आपके हाथ में है, चैप्टर खोलिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, फिर वहां से उत्तर निकालिए, तो देखिए कि आपका दिमाग कैसे मथेगा और आपको मक्खन प्रोवाइड कर देगा। तो मित्रों मैं कैबिनेट को लेकर के ज्यादा बातें तो अब नहीं करने जा रहा हूं क्योंकि वक्त उतनी ज्यादा इजाजत भी नहीं दे रहा है, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया है, इसके ऊपर विचार करें और जो खासकर पढ़ाई का जो तरीका होना चाहिए उसका भी नमूना मैंने पेश किया है, और यदि हो सकेगा आगे चलकर तो फिर हम लोग कैबिनेट पर कभी बात करेंगे। हाँ, यहां जो क्लासेस होती हैं उसमें इन सब चीजों की क्लैरिटी दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा दी जाती है ताकि स्टूडेंट्स को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन न रह जाए। लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं जो क्लियर होने ही चाहिए, कभी और वक्त मिलेगा तो हम लोग कैबिनेट पर बातें करेंगे। मित्रों, अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स पर। न्यूज़पेपर्स की आज काफी क्लिपिंग्स हैं, नॉलेज सेंटर पर मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं एक बात आप लोगों से विशेष रूप से कहना चाहूंगा, वो ये कि आपको मालूम है कि जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है मनरेगा, उसके 10 साल पूरे हो गए हैं। परसों की बात है, परसों शाम को नेशनल न्यूज में इस पर काफी एक रिपोर्टिंग जैसी भी आ रही थी। 10 साल पूरे हो गए, तो अभी आपको मनरेगा पर बहुत से आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे, एडिटोरियल कमेंट्स भी पढ़ने को मिलेंगी, क्या सफल, कितना सफल रहा, क्यों सफल नहीं रहा, आगे क्या किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से एक मंथन जो मैंने अभी बात कही वो मनरेगा के बारे में मिलेंगे। और चूंकि 10 साल पूरे हुए हैं इसलिए मुझे ये टॉपिक सिविल सर्विस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मालूम पड़ रहा है। कल भी मैंने आपको एक क्लिपिंग्स प्रोवाइड की थी, देखेंगे आप न्यूज़पेपर्स की, और आज भी मैं कुछ पेपर आपको क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, और आगे भी यदि क्लिपिंग्स ऐसी होंगी तो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। तो प्लीज मनरेगा को आप अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक में शामिल कर लें। तो मित्रों, न्यूज़पेपर्स के बारे में मैं अभी और डिस्कस करने की स्थिति में नहीं हूं। अब मैं आता हूं ईमेल पर। तो सबसे पहले मेरे पास एक स्टूडेंट का मेल है जो अभी फरवरी के बैच में आ रहे हैं, और ये स्टूडेंट है मुकेश कुमार झा जो मधुबनी बिहार से आ रहे हैं। मैं उनका मोबाइल नंबर बोल रहा हूं, तो जो भी स्टूडेंट उनसे कॉन्टेक्ट करना चाह रहे हों वो उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मुकेश कुमार झा का मोबाइल नंबर है 9470238793। मित्रों, एक दो मेल हैं जिसमें उन्होंने जानना चाहा है कि अंग्रेजी उनकी बहुत कमजोर है, अंग्रेजी के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा विषय है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि सबसे अच्छा तरीका तो आपको बेसिक तो कुछ मालूम होना ही चाहिए, इसका व्याकरण क्या होता है, कुछ वोकैबुलरी आपके पास होने चाहिए, शब्दों के अर्थ मालूम होने चाहिए, और इसके बाद जो एक आदत पड़ती है अंग्रेजी की, मुझे लगता है कि न्यूज जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप रोजाना रेडियो की 9:45 से 9 बजे और 9:45 से 9:15 बजे की न्यूज सुनेंगे तो आप देखेंगे कि इंग्लिश की न्यूज होती है, उसी का हिंदी में ट्रांसलेशन होता है। तो दिमाग धीरे धीरे उस कल्चर में आने लगता है। हिचक छोड़ करके थोड़ी बहुत बोलने की कोशिश कीजिए, न्यूज़पेपर्स पढ़िए इंग्लिश के, और दूसरी चीजें जहां भी मिले पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो थोड़ा वक्त तो लगेगा दिमाग में रचने बसने में, लेकिन इतनी अंग्रेजी आ जाएगी कि आप सिविल सर्विस क्वालिफाई कर सकें। और मित्रों, अगर आप सिविल सर्विस में बैठ रहे हैं तो इस बात को इंश्योर करें कि जो उसके जनरल इंग्लिश का पेपर है, जो क्वालिफाइंग ही है, उसको आप क्वालिफाई करने लायक बने, क्योंकि उसका कोई विकल्प आपके पास नहीं है। तो मित्रों, और बहुत से मेल हैं जो उन्होंने भी मेल भेजे हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के मैं नाम ले रहा हूं। खुशाल कांबले यवतमाल से, प्रीति बंसोड़ दुर्ग छत्तीसगढ़ से, भरत मिश्रा गोरखपुर से, सुमित मिश्रा कानपुर से, शुभम कोले, धनंजय कुमार, प्रभात कुमार मेरठ से, दिवाकर कुमार और सुरभि अंबिकापुर से, आप सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें मित्रों जो सबसे अच्छा मेल है वो खुशाल कांबले का है, यवतमाल से हैं आप। खुशाल, बहुत बहुत आपको बधाई और बेहतर भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मित्रों, इसी के साथ ही मैं आज के अपने इस डेली ऑडियो गाइडेंस को यहीं समाप्त करता हूं। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।